अधोक्षज अधोक्षलाम्भ मिहाशुभात्मना शरीरिणा संसृति चक्र शातनम् तद्रम निर्माण सुखम विदुर्बुधा ततो भजत्वं हृदय हृदीश्वरम्
अधोक्षज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जो भौतिकवादी मन या प्रायोगिक ज्ञान की पहुंच से परे हैं आलंभम निरंतर संपर्क में रहते हुए यहाँ इस भौतिक जगत में अशुभात्मनः जिसका मन भौतिकता से कलुषित है शरीरिनः देहदारी जीव का संस्कृति संसार का चक्र चक्र शातनम पूर्णतया रोकते हुए तत् ब्रह्म निर्वाण पर ब्रह्म या परम सत्य से जुड़ा हुआ सुखम दिव्य सुख विदुहो समझो बुद्धः आध्यात्मिक दृष्टि से प्रवृद्ध हुए ततः इसलिए भजद्वम भक्ति में लग जाओ हृदये हृदय के भीतर हृदीश्वरम हृदय के भीतर परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जीवन की असली समस्या जन्म मृत्यु का चक्र है जो पहिए चक्र की भांति बारंबार ऊपर नीचे चलता रहता है किंतु जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संपर्क में रहता है तो ये चक्र पूरी तरह रुक जाता है। दूसरे शब्दों में भक्ति में निरंतर मग्न रहने से मनुष्य को जो दिव्यानंद मिलता है उससे वह भौतिक संसार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। सारे विद्वान व्यक्ति से जाते हैं अतः हे मित्रों हे असुर पुत्रों तुम सभी लोग तुरंत अपने अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान और पूजन प्रारंभ कर दो। तात्पर्य सुनिए श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सामान्यतः यह समझा जाता है कि परम सत्य के निराकार ब्रह्म स्वरूप में लीन होने से मनुष्य पूर्णतया सुखी हो जाता है। ब्रह्म निर्वाण शब्द परम सत्य से जुड़ने के संदर्भ में है जिसे तीन स्वरूपों में अनुभव किया जाता है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। मनुष्य को निराकार ब्रह्म में लीन होने पर ब्रह्म सुख का अनुभव होता है क्योंकि ब्रह्म ज्योति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का तेज है। यस्य प्रभा प्रभुतो जगदंध कोटि यस्य प्रभा या निराकार ब्रह्म कृष्ण के दिव्य शरीर की किरण है अतः मनुष्य को ब्रह्म में लीन होने से जो भी सुख मिलता है वह कृष्ण के संपर्क के कारण है। कृष्ण से संपर्क पूर्ण ब्रह्म सुख है। जब मन निराकार ब्रह्म के संपर्क में रहता है तो मनुष्य प्रसन्न होता है किंतु मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने के लिए और आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह ब्रह्म ज्योति में लीन रहना सदैव निश्चित नहीं है। जैसा कि कहा गया है आरुह्य कृष्णेन परम पदम ततः पतन्ति अधो अनादृत युष्मत् अंग्रयः। कोई भले ही परम सत्य के ब्रह्म स्वरूप से तदाकार हो लेकिन तो संभावना बनी रहती है कि वह दोक्षत वासुदेव से पहचान न बना पाने के कारण च्युत हो जाए। वसुदाय से ब्रह्म सुख से भौतिक सुख विलग हो जाता है किंतु जब कोई निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा से होता हुआ दास मित्र पिता या प्रेमी के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास पहुंचता है तो उसका सुख सर्वव्यापी बन जाता है। तब उसे स्वतः दिव्य आनंद का अनुभव होता है जिस तरह की चमकते चंद्रमा को देखकर सुख होता है। चंद्रमा को देखकर मनुष्य को प्राकृतिक सुख प्राप्त होता है किंतु जब वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करता है तो उसका दिव्य सुख सैकड़ों हजारों गुना बढ़ जाता है। जो ही भगवान से घनिष्ठता पूर्वक जुड़ जाता है त्यों ही वह सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है या निवृत्ति तनुभृता समस्त भौतिक सुख की समाप्ति निवृत्ति या निर्वाण कहलाती है। शिल रूप गोस्वामी भक्ति रसाम सुंदु में कहते हैं ब्रह्मानंदो भवेत एष चेत प्रार्थ गुणी कृता नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलम तुला तुला तुलाम अपि। यदि ब्रह्मानंद को अर्थात ब्रह्म ज्योति में लीन होने से आनंद को 100 करोड़ गुना कर दिया जाए तो भी वह भक्ति से अनुभव किए दिव्य आनंद के सागर के एक परमाणु के बराबर भी नहीं होगा। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समान सर्वेशु भूतेषु मत भक्ति लभते प्राण। जो आध्यात्मिक पद पर स्थित होता है उसे तुरंत पर ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है और वह पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। ना तो वह शोक प्रकट करता है ना किसी वस्तु की इच्छा करता है, वह समस्त जीवों पर संभाव रखता है। इस दशा में उसे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। भगवद गीता 18:54। यदि कोई ब्रह्म निर्वाण पद से आगे बढ़ता है तो वह भक्ति अवस्था को प्राप्त करता है। मद भक्ति लभते पराम अधोक्षज आलंभम शब्द मन को उन परम सत्य में लगाए रखने का सूचक है। जो मन तथा बौद्धिक चिंतन के परे है वह सवई मनहा कृष्ण पदार विंदयो। ये अर्चा विग्रह पूजा का फल है। निरंतर भगवान की सेवा करते रहने तथा उनके चरण कमलों का ही चिंतन करने से मनुष्य स्वतः सारे भौतिक कलमश से छूट जाता है। इस प्रकार ब्रह्म निर्वाण सुगम शब्द ये बताता है कि जब कोई परम सत्य के संपर्क में रहता है तो विषय वासना पूर्णतया समाप्त हो जाती है। ओम अज्ञान प्रहलाद महाराज यहाँ पर अपने सहपाठियों को बहुत दक्षतापूर्वक उपदेश दे रहे हैं और ये उपदेश वो है जो उन्होंने नारद जी से सीखा जब वो माता के घर में थे। तो प्रहलाद महाराज ऐसे स्थान में प्रचार कर रहे हैं जहाँ पे असुर लोग रहते हैं, असुरों के बीच में असुरों के बालकों को ये उपदेश दे रहे हैं। हालांकि बालकों का कोई दोष नहीं था लेकिन क्योंकि वो असुरों के संतानें थीं तो हो सकता है कि आगे चलकर भी षंड और अमर्क शिक्षाओं से वो भी क्रमशः असुर बन जाएं और हिरण्यकश्यपु जैसे भी बन जाएं। तो इस कारण से प्रहलाद महाराज के लिए ये ऐसी परिस्थिति में प्रचार करना उपदेश देना ये बहुत बड़े खतरे की बात है। लेकिन उसके बाद भी प्रहलाद महाराज के हृदय में दया है और वो असुरों को बचाना चाहते हैं, भव सागर से बचाना चाहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बचाना चाहते हैं और उनको भी शुद्ध भक्ति के धरातल पर लाना चाहते हैं। तो हम श्रीमद् भागवत के श्लोक को समझाने के लिए हम चैतन्य चरितामृत से कुछ आपको लीला सुनाना चाहेंगे जिससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में भगवत साक्षात्कार सर्वोच्च साक्षात्कार है और जो तीन प्रकार के साक्षात्कार हैं, तीन प्रकार के आध्यात्मवादी हैं भगवान को तीन तरीके से समझते हैं। वदन्ति तत्वविदस् तत्त्वम् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पर तात्पर्य में लिखा है कि ब्रह्म का साक्षात्कार है, परमात्मा का साक्षात्कार है और भगवान का साक्षात्कार है। तो सर्वोच्च साक्षात्कार क्या है? भगवान का साक्षात्कार। उन्हीं भगवान के अलग अलग साक्षात्कार हैं। आध्यात्मवादी जो हैं जो भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं या तो वो परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं या फिर ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाते हैं। तो ये लीला है जगन्नाथपुरी की लीला है। श्री चैतन्य महाप्रभु किस तरह से संन्यास लेने के उपरांत वो जगन्नाथपुरी गए थे। उनकी माता शची माता की इच्छा ये थी कि वो जगन्नाथपुरी में निवास करें, जगन्नाथपुरी में रहकर, क्योंकि जगन्नाथपुरी से शची माँ को सूचना मिलती रहेगी चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो इस चैतन्य महाप्रभु ने इस अनुरोध को, इस प्रार्थना को चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया और उन्होंने संन्यास लेने के उपरांत विचार किया कि वो जगन्नाथपुरी जाएंगे। तो वैसे उनकी ये भी इच्छा थी जगन्नाथपुरी जाने के बाद कि वो वृंदावन जाएं, तो वृंदावन जाने की भी इच्छा थी उनकी। और लेकिन नित्यानंद प्रभु ने ऐसी व्यवस्था की कि वृंदावन तो नहीं जा पाए, उससे पहले नित्यानंद प्रभु को शांतिपुर लेके आ गए। शांतिपुर जहाँ पर अद्वैत आचार्य का निवास स्थान था उस समय, तो अद्वैत आचार्य के घर पे पहुँचे और उनके घर पे उस समय अद्वैत आचार्य, उनकी पत्नी शिवास ठाकुर, उनकी पत्नी मुरारी गुप्त और कई ऐसे वैष्णव वहाँ पर विराजमान थे और सब ने जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वागत किया। शांतिपुर में कुछ देर के बाद रहने के बाद चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी केवल 4 भक्ति की गए। कौन कौन थे वो? जगदानंद पंडित, मुकुंद दत्त, दामोदर पंडित और नित्यानंद प्रभु, ये चार जो है भक्त या चैतन्य महाप्रभु के साथ गए थे। लेकिन जब 18 नाला पहुंचे, जो जगन्नाथपुरी के बिल्कुल द्वार पे जो स्थान है प्रारंभ में आता है 18 नाला पहुंचने पर चैतन्य महाप्रभु ने इन चार पार्षदों को अपने उनको पीछे छोड़ दिया और चैतन्य महाप्रभु बड़ी तेजी से जगन्नाथ जी के मंदिर की तरफ चल पड़े। और जगन्नाथ जी के मंदिर में जब गए, बहुत तेजी से अंदर गए, जिस तरह से सिंह जो है तेजी से भागता है, और चैतन्य महाप्रभु बड़ी तेजी से जा रहे थे। और मंदिर के अंदर जब भीतर जब प्रवेश किए, जगन्नाथ जी की तरफ बढ़े और जगन्नाथ जी को ही देखा था केवल अब तक, जगन्नाथ जी को ही देखा था, बलदेव सुभद्रा जी को भी नहीं देखा था। केवल जगन्नाथ जी को देखते देखते वो सीधे जगन्नाथ जी के पास गए और जगन्नाथ जी के सामने जाकर गिर गए, और गिरकर क्या हुआ, मूर्छित हो गए। तो वहां पे जो वहां के जो वॉचमैन थे और जो गार्ड्स थे और कई वहां जो लोग एकत्र थे, जो जगन्नाथ जी के जो पुजारी भी थे, वो सब देखने लगे और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया, ये सन्यासी है, ये तो बहुत ही युवा अवस्था में है और इसको क्या हो गया, अचानक ये जगन्नाथ जी के सामने आया और गिर पड़ा, मूर्छित हो गया है। तो उसी समय वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य भी पहुंचे। सार्वभौम भट्टाचार्य वो महाराज प्रताप रुद्र के भी गुरु थे और उस मंदिर के एक ट्रस्टी भी थे जगन्नाथ मंदिर के। तो सार्वभौम भट्टाचार्य वहां पर पहुंचे और सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा ये कौन सा सन्यासी है, और देखने में तो बहुत ही तेजस्वी लग रहा है, इसके शरीर से इतना तेज निकल रहा है, ये कोई साधारण सन्यासी नहीं लगता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य पहले तो ये देखना चाहते थे कि ये जीवित भी है कि नहीं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने सबसे पहले उन्होंने रुई को रखा नाक के पास, ये देखने के लिए कि रुई हिल भी रही है कि नहीं, और रखने के बाद थोड़ी देर के बाद देखा कि वो रुई थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने न्याय के आधार पर, क्योंकि न्याय शास्त्र का आधार बनाते हुए सहारा लेते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य ये नए निष्कर्ष निकाला कि ये सुदीप्त अवस्था में है, ही इज इन डीप एक्सटेसी, कि सुदीप्त अवस्था में है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भक्ति रसाम सुंदर से उदाहरण देते हुए ये पांच प्रकार के जो प्रेम के जो स्तर हैं उसका वर्णन किया है। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसाम सुंदर में इसका वर्णन किया है, जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चेतन चरितामृत के तात्पर्य में दिया है। तो पहला जो स्टेज है जो प्रेम के विकार होते हैं उसमें जो पहला जो स्टेज है वो है धुमाईता। धुमाई का मतलब, धुमाईता का मतलब है कि अभी प्रेम प्रज्वलित नहीं हुआ है पूरी तरह से, धुएं के रूप में है, स्मोक की अवस्था में है। और उसमें जो आठ प्रकार के जो सात्विक विकार होते हैं उसमें से एक या दो विकार प्रकट होते हैं, एक या दो प्रकार के विकार प्रकट होते हैं, प्रेम के विकार प्रकट होते हैं, और बहुत थोड़ा थोड़ा ये प्रकट होता है, और भक्त के लिए संभव होता है इसको छुपा के रखना, कि भक्त जो है बाहर दिखाता नहीं, भक्त इसको जो कंसील कर सकता है, उसको छुपा के रख सकता है। और उसके बाद दूसरी अवस्था बताई गई है ज्वलित अवस्था, जिसमें दो या तीन से ज्यादा जब दिव्य इस प्रकार के विकार होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, ट्रांसेंडेंटल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, और उस समय भी जो है उसको कंसील करना, छुपा के रखना जो है संभव होता है। हालांकि बहुत कठिन होता है, उसको छुपाना आसान नहीं होता है। कभी कभी इसलिए देखते हैं कि कई बार कई ऐसे उच्चतर वैष्णव हैं जो कथा कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ना दिखाएं अपने भाव को, भाव के लक्षण को ना प्रकट करें, लेकिन कहीं ना कहीं तो दिख ही जाता है ना। तो इस प्रकार जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब गोरखपुर में थे, सबसे पहली बार उन्होंने इस्कॉन में 1971 में राधा माधव कुंज बिहारी गाया। तो राधा माधव जब कुंज बिहारी गाया तो निकट में उनके डिसाइपल थी वहां पे कौशल्या माता जी, श्री श्री राधिका रमन की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री गोवर्धन की जय। तो कौशल्या माता ने निकट में बैठे हुए थे, श्रील प्रभुपाद ने राधा माधव कुंज बिहारी तक ही बोला सिर्फ। जैसे ही कुंज बिहारी का उच्चारण किया श्रील प्रभुपाद ने, प्रभुपाद जी की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी और प्रभुपाद जी स्तब्ध हो गए, और उसी समय वहां पर लाइट चले गए, करंट नहीं रहा, अंधकार था चारों तरफ। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत धीरे धीरे बोलने लगे और कौशल्य माता जी सुन रही हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, सी कृष्णा इज हाइडिंग विद श्रीमती राधारानी इन द बुशेस। तो कृष्ण जो है श्रीमती राधारानी के साथ निकुंज में छुपे हुए हैं। तो इस तरह से ये भाव के लक्षण, कितना भी प्रयास करें, प्रेम के लक्षण कितना भी प्रयास करें, भाव छुपाना बड़ा मुश्किल है। तो इस ज्वलित अवस्था में क्या होता है, तो या तीन इस प्रकार के प्रेम के विकार प्रकट होते हैं और उसको भी छुपाने का प्रयास करते हैं, छुपा पाते हैं लेकिन बड़ी कठिनाई से। इसको कहते हैं ज्वलित। तो पहला बताया हमने धुमाईता, दूसरा बताया ज्वलित, और तीसरा है दीप्त। दीप्त का मतलब होता है जब चार या पांच लक्षण प्रकट होते हैं, और यानी कि अब अग्नि जल चुकी है, ब्लेजिंग स्टेज में है और ये ब्लेजिंग स्टेज में पहुंच जाता है, और उसके बाद फिर पांच या छह या फिर आठ के आठ जो है सात्विक विकार एक साथ प्रकट होते हैं और इसको कहते हैं उद्दीप्त अवस्था, यानी कि काफी अग्नि जल चुकी है, पूरी तरह से जल चुकी है, उसको इनफ्लेम स्टेज कहते हैं या उद्दीप्त अवस्था कहते हैं। जब पांच छह या आठ के आठ जो लक्षण है सात्विक विकार ये प्रकट होते हैं भक्त के शरीर में, और यही आठवीं और उसके बाद अगली अवस्था जो है, जो लास्ट स्टेज है, इस स्टेज में क्या होता है, जब आठ के आठ जो लक्षण है सात्विक विकार है, एट सिम्टम्स है, वो एक साथ प्रकट होते हैं, एक साथ दिखाई पड़ते हैं, और अगर इन आठ लक्षणों को हजार बार आप गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो उस अवस्था को सुदीप्त कहते हैं, सुदीप्त इंटेंसली इनफ्लेम्ड स्टेज। तो चैतन्य महाप्रभु इस स्टेज को प्रकट कर रहे थे कि आठ के आठ लक्षण सात्विक विकार उनके शरीर में प्रकट हो रहे थे, और वो भी कैसे, थाउजेंड टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया जाए, इतना ज्यादा जो है इंटेंस था उनका ये प्रेम का लक्षण जो प्रकट किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, उसको कहते हैं सुदीप्त अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसली इनफ्लेम स्टेज। तो श्रील रूप गोस्वामी ने इस तरह से वर्णन किया है भक्ति रसाम सिंधु में। और तो ये इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु प्रेम के सारे लक्षण प्रकट करते। तो सोच के देखें कितना आनंद आता होगा जब कोई प्रेम की अवस्था में पहुंच जाता है, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं सांदर आनंद विशेष विशेष आत्मा। इसका मतलब क्या है कि कंडेंस्ड ब्लिस, ब्लिस जब बहुत कंडेंस हो जाता है, तो वहां श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं कि इंद्र तृप्ति की रंच मात्र भी उसका आभास नहीं होता, इंद्र तृप्ति का रंच मात्र भी आभास नहीं होता है। और अभी क्या हमारी अवस्था क्या है, कृष्ण प्रेम का रंच मात्र भी आभास नहीं हो रहा है, हो रहा है कुछ भक्तों को जरूर है, महाराज जी बैठे हैं तो कुछ भक्तों को निश्चित रूप से हो रहा है, लेकिन सामान्य रूप से नहीं हो पाता है कि कृष्ण प्रेम का रंच मात्र भी आभास हो। रंच मात्र आभास होने का मतलब क्या होता है, क्या होता है, नामाभास। तो उस अवस्था में भी नहीं है, और यहां पर क्या है कि यहां पर सारे विकार दिखाई पड़ रहे हैं, आठ के आठ सात्विक विकार दिखाई पड़ रहे हैं, और वो भी हजार गुना थाउजेंड टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया है। तो बड़ा कठिन है भौतिक जगत में इस प्रकार के लक्षण प्रकट करना। और यहाँ पे शिला भक्ति सिद्धांत सरि ठाकुर कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो सुदीप्त अवस्था के जो लक्षण है वो केवल एक नित्य सिद्ध भक्त ही प्रकट कर सकता है, यानी कि आठ के आठ सात्विक विकार अगर ये थाउजेंड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर अगर प्रकट हो रहे हैं किसी के शरीर में, तो समझ लीजिए कि वो नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध अवस्था में, तो नित्य सिद्ध भक्त है। तो नित्य सिद्ध में ही प्रकट होते हैं, या फिर श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है उनमें दिखाई पड़ रहे हैं आठ के आठ लक्षण एक साथ हजार गुना जो मल्टीप्लाई हो गया है। सर्व भट्टाचार्य नहीं समझ पा रहे थे कि क्या कारण है कि चैतन्य महाप्रभु से इतने ज्यादा वो आकर्षित हो रहे हैं, इतना अट्रैक्शन क्यों है इनमें, इनको देखकर ऐसा क्यों मेरे हृदय में स्नेह उत्पन्न हो रहा है। लेकिन वो क्या कर रहे थे, अपनी भावनाओं को नहीं अप्लाई कर रहे थे, बल्कि वो लॉजिक्स को अप्लाई कर रहे थे। ये जो सुदीप्त अवस्था पर जो जजमेंट उन्होंने किया ये बेसिकली लॉजिक्स के बेस पे किया, इसलिए नहीं कि वो बहुत भक्ति में आगे बढ़े हुए थे, क्योंकि न्याय दर्शन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ था और लिटरेरी नॉलेज उनको बहुत था, और पूरे पृथ्वी में बृहस्पति के अवतार थे, तो इस कारण से उनको सभी शास्त्रों का ज्ञान भी था, और तो न्याय शास्त्र के अनुसार जो इन्होंने बताया कि चेतने महाप्रभु सुदीप्त अवस्था में है, और लेकिन ये नहीं समझ पा रहे इतना आकर्षण क्यों हो रहा है मुझे सन्यासी को देखकर, क्या कारण है। तो चेतने महाप्रभु को फिर सर्वम भट्टाचार्य अपने घर पे लेकर आए और सुबह के वक्त पहुंचे थे चेतने महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन, लेकिन दोपहर के तक दोपहर के समय तक जो है चेतने महाप्रभु मूर्छित रहे थे सर्वम भट्टाचार्य के घर में। और वो जो चार भक्त पीछे रह गए थे वो तो बहुत 200 मील दूर रहे थे, दिखाई नहीं दे रहे थे उनको, तो श्री चेतने महाप्रभु कहाँ गए, इतनी तेजी से आगे निकल गए थे प्रेमावश वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, तूफान की तरह आगे निकल गए थे। ये चार के चार पार्षद जगदानंद पंडित, नित्यानंद प्रभु और दामोदर पंडित, ये सब जो है पीछे रह गए, ये पीछे रह गए। तो जब पीछे रह गए तो उनको तलाश कर रहे थे वो चेतने महाप्रभु विरह में, ये लोग सेपरेशन में ढूंढ रहे थे कि कहाँ गए महाप्रभु कहाँ गए। जब वो मंदिर पहुंचे जगन्नाथ जी के मंदिर के जगन्नाथ जी के सामने, और कई भक्तों ने कई लोगों ने वहाँ पे तरह तरह की बातें की कि ऐसा हुआ वो सन्यासी आया और एकदम से गिर गया नीचे, तो तरह तरह से लोग वहाँ पे वर्णन कर रहे थे चेतने महाप्रभु के बारे में। और उसी समय वहाँ पे गोपीनाथ आचार्य भी आए थे, गोपीनाथ आचार्य सर्वम भट्टाचार्य के ब्रदर इन लॉ थे, सर्वम भट्टाचार्य की बहन से गोपीनाथ आचार्य ने विवाह किया था। गोपीनाथ आचार्य ही बात में हम देखते हैं आज से कितने साल पहले मुझे याद नहीं, लेकिन 17 सेंचुरी में कह सकते हैं गोपीनाथ आचार्य श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण के रूप में आए। और चेतने भागवत की टीका में शिल भक्ति सिद्धांत सरसी ठाकुर ने बताया कि गोपीनाथ आचार्य भी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। तो गोपीनाथ आचार्य बहुत बड़े स्कॉलर थे वो भी, तो गोपीनाथ आचार्य भी वहाँ पर मौजूद थे और वो मुकुंद को भी जानते थे, मुकुंद भी आए थे, क्योंकि मुकुंद दत्त को नवदीप से जानते थे। तो मुकुंद दत्त ने गोपीनाथ आचार्य से पूछा कि आप जानते हैं कि महाप्रभु कहाँ गए, चेतने महाप्रभु कहाँ गए, हम उनको ढूंढ रहे हैं, उनके साथ ही आए थे लेकिन हम लोग बहुत पीछे रह गए, बहुत देर से उनकी तलाश कर रहे हैं, आप बता सकते हो कि वो कहाँ पे गए। तो गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि मैं आपको वहाँ लेके जाता हूँ, आप चिंता मत करिए, वो यहीं पे हैं, सर्वम भट्टाचार्य के घर पर हैं। तो चारों के चारों जो भक्त हैं नित्यानंद प्रभु के साथ, गोपीनाथ आचार्य इन चारों पार्षदों को सर्वम भट्टाचार्य के घर पे ले गए, और वहाँ पे सर्वम भट्टाचार्य जो हैं चेतने महाप्रभु के निकट खड़े थे। चेतने महाप्रभु समय मूर्छित अवस्था में थे, नित्यानंद प्रभु को देखकर सर्वम भट्टाचार्य ने बड़ा सम्मान किया, बड़ा आदर दिया, उनको आसन भी दिया, हर प्रकार का शिष्टाचार का पालन करते थे सर्वम भट्टाचार्य, लेकिन हृदय में कृष्ण भक्ति नहीं थी उनकी। उन्होंने प्रार्थनाएं भी की, उन्होंने गुणगान भी किया, सब कुछ किया उन्होंने नित्यानंद प्रभु के लिए, लेकिन हृदय में कृष्ण भक्ति नहीं थी, क्या था, शुष्क वैराग्य था निर्विशेषवादी होने के कारण। तो इस प्रकार से सर्वम भट्टाचार्य ये सब करने लगे। नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, चेतने महाप्रभु के कानों में जोर जोर से हरि नाम का उच्चारण किया, हरी हरी, और ऐसा उच्चारण करने से क्या हुआ, श्री चेतने महाप्रभु जाग गए और जागते ही भाव वेश में फिर से संकीर्तन करने लगे और नृत्य करने लगे। तो ये सब जो है प्रेम के लक्षण है, प्रेम के द्वारा, भगवत प्रेम के द्वारा जो आनंद प्राप्त होता है उसकी अनुभूति हम कर भी नहीं सकते हैं अभी, लेकिन अब देखिए प्राकृत अवस्था में भक्त जो है थोड़ी सी भी कृष्ण भक्ति जाग जाती है, किस तरह से संसार छोड़ देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, वस्त्र त्याग देते हैं, बाल त्याग देते हैं और कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से लग जाते हैं। नहीं, ये तो केवल प्रारंभिक अवस्था है, तो सोच के देखिए जब कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा तो क्या होगा, आपको तो आभास भी नहीं होगा कि आसपास कौन खड़ा है। और ये तो स्वयं श्री चेतने महाप्रभु है, स्वयं कृष्ण है श्रीमती राधारानी के भाव में, उनके साथ क्या हो रहा होगा आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार सर्वम भट्टाचार्य बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे श्री चेतने महाप्रभु से, उनके इस दिव्य कांति को देखकर, उनके इस भक्ति भाव को देखकर चेतने महाप्रभु से बड़े प्रभावित हो रहे थे। उन्होंने सर्वम भट्टाचार्य ने चाहा कि चेतने महाप्रभु कहीं ना कहीं उनके निकट रहे, कहीं दूर ना जाए। तो सर्वम भट्टाचार्य ने सुझाव दिया कि निकट में ही उनकी आंट थी, आंट को क्या कहेंगे, आंट, उनकी आंट का घर था सर्वम भट्टाचार्य का। तो उनकी जो आंट थी वो काफ़ी दिनों से कहीं बाहर गई हुई थी, तो घर खाली था, तो सर्वम भट्टाचार्य ने चाहा कि चेतने महाप्रभु वहाँ पे रुके ताकि वो जो है नज़दीक में रहकर सब कुछ उनके बारे में जान सकें और सुन सकें। तो सर्वम भट्टाचार्य ने सुपुत्र चंदनेश्वर को भेजा और कुछ सेवकों के साथ, जगन्नाथ जी का प्रसाद लाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद मंगवाया। अब ये लाभ जरूर था सर्व भट्टाचार्य को, हालांकि वो मायावादी दार्शनिक थे, लेकिन प्रत्येक दिन ये न के प्रकार जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जरूर लेते थे। तो इस तरह से जगन्नाथ जी की कृपा तो थी कहीं ना कहीं उनके ऊपर, और सर्व भट्टाचार्य ने चंदन ईश्वर उनके जो पुत्र सुपुत्र थे और कुछ सेवकों के माध्यम से जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मंगवाया चैतन्य महाप्रभु के लिए। जब दोपहर का समय आया, जब लंच प्रसाद का समय आया, तो गोपीनाथ आचार्य जब लंच प्रसाद सबने ले लिया, सार्व भट्टाचार्य ने भी ले लिया, गोपीनाथ आचार्य ने भी ले लिया, सबने महाप्रसाद ले लिया, तो सार्व भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य से पूछा, क्या जिज्ञासा की, ये जो सन्यासी है इसका आप पूर्वाश्रम जानते हैं, ये पिछले कौन से आश्रम में थे, क्या ये पूर्वाश्रम, पूर्वाश्रम देखिए उसमें बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति से पूछा जाता है सन्यासी से, तो ये नहीं पूछा जाता था कि आप गृहस्थ थे क्या या ब्रह्मचारी थे। सन्यासी से क्या पूछा जाता है कि आपका पूर्व आश्रम क्या था, आपका पिछला आश्रम क्या था। तो गोपीनाथ आचार्य बताते हैं कि ये तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र के सुपुत्र हैं, शची माँ के सुपुत्र हैं, और इनके जो नाना है वो नीलाम्बर चक्रवर्ती हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा सार्व भट्टाचार्य नीलाम्बर चक्रवर्ती के ये पोते हैं, ओहो ये तो हमारे ही गांव से है, नवदीप से है, क्योंकि मेरे पिता महेश्वर विशारद नीलाम्बर चक्रवर्ती के साथ क्लासमेट थे, एक ही साथ वो पढ़ते थे। अच्छा 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 अच्छा, तभी इतना स्नेह उत्पन्न हो रहा है, ये तो फिर हमारे ही एरिया से है। सार्व भट्टाचार्य ने इस तरह से कहा। सन्यास किससे लिया इन्होंने, अरे इन्होंने सन्यास तो केशव भारती से लिया है, इनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य, अरे ये तो ब्रह्मचारी नाम है, केशव भारती से लिया है, ये भारतीय संप्रदाय के सन्यासी हैं, इसका मतलब ये उच्च कोटि के सन्यासी नहीं है। लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूं, इनको मैं अपग्रेड कर सकता हूं। सर्व भट्टाचार्य कह रहे कि मैं इनको अपग्रेड कर दूंगा, वेदांत दर्शन का अध्ययन करा के उसमें शिक्षित करके मैं इनको अपग्रेड कर दूंगा। सन्यास कई प्रकार के सन्यास आश्रम है, हालांकि शंकराचार्य ने एकत्व का दर्शन प्रस्तुत किया कि हम सब एक हैं, लेकिन जब सन्यास की बात आई तो उसमें कैटेगरी दे दी बहुत सारे, और पहला कैटेगरी क्या है, सरस्वती, इस तरह सरस्वती, भारती, पुरी, तो कई तरह के कैटेगरीज हैं, पर्वत, सागर, कई तरह के कैटेगरीज हैं इसमें। तो उन्हें कहा कि भारती जो है, भारतीय संप्रदाय, ये भारतीय सन्यास जो है, ये इतना ऊंचा सन्यास आश्रम नहीं है, मैं इनको वेदांत दर्शन में शिक्षित करूंगा। तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि आप पागल हो गया। गोपीनाथ आचार्य और सार्व भट्टाचार्य का बड़ा ही स्वीट रिलेशनशिप था, तो एक दूसरे को कोसते भी थे, एक दूसरे की प्रशंसा भी करते थे, एक साथ लड़ाई भी करते थे। तो गोपीनाथ आचार्य का, तो पागल हो, तो जानते हो कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, ये स्वयं कृष्ण है, इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ये परम भगवान है, इनको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो उन्हें कहा कि क्या सबूत है तुम्हारे पास, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास। उन्हें कहा कि प्रमाणिक आचार्यों का जो कथन ये है कि ये परम भगवान है, प्रमाणिक आचार्य जो जान चुके हैं कि परम भगवान कौन है, जो समझ चुके हैं परम भगवान कौन है, उनके आधार पर मैं कह रहा हूं, शास्त्र के आधार पर मैं कह रहा हूं कि ये परम भगवान है। तो गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि आप बड़े बहुत बड़े विद्वान हैं, आपके कई शिष्य हैं, आप बहुत बड़े गुरु हैं, और वास्तव में देखा जाए तो आपके जैसे विद्वान पूरे पृथ्वी में नहीं है, लेकिन समस्या जानते हैं क्या है कि आपके ऊपर कृष्ण की कृपा नहीं है, रंच मात्र भी कृपा नहीं है, इसलिए ये आपके घर में रहते हुए भी आप उनको नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये परम भगवान है। कितने दुर्भाग्य की बात है, आपके ऊपर कोई कृपा नहीं है। तो सार्व भट्टाचार्य थोड़े से गुस्से हो जाते हैं, बोलते हैं लेकिन आपके ऊपर कृपा है ये कैसे मान लो, ठीक है मेरे ऊपर कृपा नहीं लेकिन आपके ऊपर कृपा हुई है कैसे मान लो। तो कहने का अर्थ ये, जैसे श्रील प्रभुपाद या तात्पर्य बता रहे हैं कि जो भगवत साक्षात्कार है इसमें सबसे ऊंचा आनंद प्राप्त होता है, लेकिन इस भगवत साक्षात्कार की अनुभूति है ये मान लेना केवल थ्योरेटिकली कि कृष्णा है तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जिस तरह से सरस्वती श्याम सुंदर की बेटी ने कहा कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, जो मायावादी सन्यासी भी नहीं बता पाए। जब प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि भगवान कौन है, प्रभुपाद ने कहा देखो 3 साल की बेटी है, बच्ची है, और ये बता पा रही है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। कोई थ्योरेटिकली इस बात को स्वीकार कर लेता है, मान लेता है, इसका मतलब करोड़ों करोड़ों जन्मों की अज्ञात सुकृति उसके पास है संचित। तभी कोई समझ पाता है कि कृष्णा तो सुप्रीम इज सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है। जैसे हम भी जब पहले आए और हमने और कई गीता के प्रकाशन पढ़े तो हम नहीं समझ पा रहे थे कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड। हमारी बहुत जिज्ञासा होती थी बचपन से ही कि परम भगवान कौन है, ये खिचड़ी इतनी सारी बनी हुई है, हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। लेकिन जैसे श्रील प्रभुपाद जी की भगवदगीता हमें मिली और शुरू में इंट्रोडक्शन जब पढ़ा तो वहीं क्लियर कर दिया श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो केवल शुद्ध भक्तों की कृपा से यह होती है कृपा। कि शुद्ध भक्ति कृपा कैसे होती है, जब हम तो ये जान पाते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इसलिए श्रील प्रभुपाद पूरे भारतवर्ष में पूरे विश्व में जहां भी प्रचार करते थे प्रभुपाद इसी बात पर जोर देते थे कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो यहां पर क्या बता रहे गोपीनाथ आचार्य बता रहे, नॉलेज ऑफ द समम बोनम एब्सोल्यूट ट्रूथ इज एविडेंस ऑफ द मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। समम बोनम का मतलब है कि परम भगवान ही सभी कारणों के कारण है भगवान श्री कृष्ण। कोई अगर ये जान लेता है तो समझ लीजिए उसके ऊपर कृष्ण की कृपा हुई है। यानी कि भगवान को जानने का मतलब है भगवान की शक्तियों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना। यानी कि अगर आप गर्मी महसूस करते हैं तो यह समझ लीजिए कि सूर्य है। 42 डिग्री 45 डिग्री में आपको जाकर देखने की जरूरत नहीं सूर्य निकला भी है कि नहीं। इट इज अंडरस्टूड, ये है समझ लेना चाहिए। कोई बुद्धिमान व्यक्ति बता सकता है लक्षणों से कि इस शक्ति का स्रोत कौन है। तो इस तरह से ये साथ में गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं कि आपने स्वयं देखा, आपने स्वयं का ये सुदीप्त अवस्था में है और चैतन्य महाप्रभु के सारे प्रेम के लक्षण आपने देखे, फिर भी आपको इस बात की अनुभूति नहीं हो रही है, फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये परम भगवान है, कितने दुर्भाग्य की बात है। तो गोपीनाथ आचार्य इस प्रकार तर्क वितर्क कर रहे थे। सारमोट आचार्य ने कहा कि मैं शास्त्र के आधार पर बात कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं शास्त्र के आधार पर बात कर रहा हूं और आगे बात बहुत आगे बढ़ती जा रही है। कहां पर लिखा बताइए शास्त्र में, और जहां तक हो सकता है कि चलो मान भी लिया जाए कि ये परम भगवान है, लेकिन ये कलयुग में क्या कर रहे हैं, ये कलयुग में क्या कर रहे हैं। उनको तो त्रियुग बताया गया, श्रीमद् भागवत का ही तो कथन है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वो त्रियुग है, लेकिन प्रहलाद महाराज ये भी कह रहे हैं कि छंद अवतार भी होते हैं, तो ये त्रियुग है। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं कि आपका जो शुष्क न्याय है इस कारण से आपका दिमाग खराब हो गया है। Because of dry logic, your brain is spoiled. आप नहीं समझ पाओगे, आप ये नहीं जानते हैं त्रियुग तो भगवान का नाम है। हजार नाम जो बताए गए हैं भीष्म पितामह विष्णु सहस्त्र नाम है, उनको एक त्रियुगी बोलते हैं, ये भगवान का पवित्र नाम है उनका। और अन्य युगों में लीला अवतार होते थे, कलयुग में लीला अवतार नहीं होता है, कलयुग में युग अवतार होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में युग अवतार है, वो युग धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। श्रीमद् भागवत का इसका प्रमाण है। श्रीमद् भागवत का नहीं जानते आप, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान जो है अलग अलग प्रत्येक युग में अलग अलग वर्ण में प्रकट होते हैं। ये आप भूल गए, सतयुग में श्वेत रंग में प्रकट होते हैं, त्रेता युग में हरे रंग में प्रकट होते हैं, और द्वापर युग में किसमें श्याम वर्ण में प्रकट होते हैं, और कलयुग में पीत वर्ण में प्रकट हो रहे हैं। क्या ये आप जानते नहीं है, ये श्रीमद् भागवत का प्रमाण है। और श्रीमद् भागवत में तो लिखा है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती सुमे दिशा। बुद्धिमान लोग ऐसे भगवान की पूजा करेंगे जो संकीर्तन यज्ञ में भाग लेते हैं। ये सब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, शास्त्र आप पढ़ते नहीं है। तो इस प्रकार एनीवे ये तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसे ये सब भी तो शास्त्र में दिया हुआ है। तो सारोपटाचार्य ने सोचा कि अब कैसे क्या बात करूं, और मैं तो उन्होंने बात को बदल दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है थोड़ा सबसे पहले जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके आओ चैतन्य महाप्रभु के लिए, उनके पार्षदों के लिए, और उसके बाद तो मुझे शिक्षा देना, ठीक है। तो सारोपटाचार्य ने टॉपिक को बदल दिया, क्योंकि ऐसा है ना जब जठराग्नि जब बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा हीटेड आर्गुमेंट चलने लगते हैं मीटिंग में, तो सबसे अच्छा तरीका है उस अग्नि को शांत करने का कि राधिका रमन जी का महाप्रसाद लाया जाए मीटिंग में और सबको महाप्रसाद खूब खिलाओ, अग्नि शांत हो जाएगी, अपना क्रोध कम हो जाएगा। तो इस प्रकार सर्वमणाचार्य चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि आप वेदांत दर्शन सुनो मुझसे, इससे बहुत लाभ होगा। आप चैतन्य महाप्रभु का ठीक, चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल भोले भाले की तरह वो चेतने महापुरुष सारमठाचार्य के समक्ष चुपचाप बैठ गए। सारमठाचार्य उनको आदर देते हुए चेतने महापुरुष को ऊंचा स्थान दिया। सन्यासी होने के बाद नाते सारमठाचार्य नीचे बैठे और लगातार 7 दिन के लिए सारमठाचार्य ने वेदांत सूत्रों के ऊपर वेदांत दर्शन की व्याख्या करना शुरू कर दिया। 7 दिन के बाद चेतने महाप्रभु को देखे, सारमठाचार्य देखे चेतने महाप्रभु कुछ बोल ही नहीं रहे। ये क्या बात है, महाप्रभु कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कोई इशारा नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं चेहरे में, चुपचाप बैठे हैं मूर्ति की तरह। उन्होंने कहा कि 7 दिन से मैं बोल रहा हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्यों चुप है और क्या आप समझे भी हैं इस बात को जो मैंने बताया है, नहीं भी समझे हैं, पता नहीं, कुछ बताइए तो सही कुछ। तो चेतने महाप्रभु कहते हैं कि देखिए ऐसा है, मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो एक नंबर का मूर्ख हूं, मैं तो इसलिए सुन रहा था क्योंकि आपने मुझे आज्ञा दी है कि ना, आपने मुझे आज्ञा दी इसलिए मैं सुन रहा था, लेकिन मुझे कुछ, मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूं। और जहां तक वेदांत सूत्र की बात है, इसका प्रत्येक सूत्र का अर्थ तो मैं समझ गया, लेकिन आपने जो व्याख्या की है इससे मेरा मन उत्तेजित हो गया है और आपने तो अपनी व्याख्या के द्वारा इसको बादलों से ढक दिया है, जैसे सूर्य को बादल ढकता है इस तरह से आपने बादलों को ढक दिया। बल्कि इससे पहले जब चेतने महाप्रभु जब होश में आए थे तो चेतने सार्वभौमाचार्य ने ये कहा था उनको देखकर, नमो नारायण। सार्वभौमाचार्य को सुकृति तो बहुत मिल रही थी लेकिन अब भी वो भक्त नहीं बन पाए थे क्योंकि मायावाद दर्शन का सहारा उन्हें लिया था। तो चेतने महाप्रभु को कहा था कि कृष्णेर मति रस्तु, आपकी मति हो कृष्ण में। अब वास्तव में ये मति होने वाली है कृष्ण में सार्वभौमाचार्य की इस संवाद के बाद। हालांकि चर्चा बहुत लंबा है, इतना समय नहीं है हमारे पास। तो चेतने महाप्रभु फिर कहने लगे कि वेद में जो भी दिया गया है वेद वाक्य को यथार्थ में स्वीकार करना चाहिए, उसमें अर्थवाद नहीं करना चाहिए। जब वेद में कहा गया है कि गोबर जो है पवित्र होता है, हालांकि जानवर का होता है, पशु का होता है, और जो शंख है वो भी हड्डियों से मिलता है, पशु की हड्डी से मिलता है, लेकिन फिर भी इसको शुद्ध मानना चाहिए, पवित्र मानना चाहिए, क्योंकि वेद ऐसा कर रहा है, इसमें तर्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब भी निर्विशेषवाद की चर्चा होती है वेदों में, उसका केवल एक ही अभिप्राय है, ये बताने के लिए कि प्रत्येक वस्तु जो है उसका संबंध भगवान से है और भगवान से क्योंकि संबंध है उसका, वो भी दिव्य है क्योंकि भगवान से संबंध है, भगवान की शक्ति है, उसमें कोई भौतिक लक्षण नहीं होते हैं क्योंकि उसका संबंध भगवान से है। तो और साथ में चांदोग्य उपनिषद से चेतने महाप्रभु ने कोट किया, चेतने महाप्रभु ने कहा चांदोग्य उपनिषद में भी तो दिया गया है, क्या दिया गया है, स ऐक्षता। इस तरह के वेदांत वेद के वाक्य हैं। स ऐक्षता का मतलब है कि इस तरह से भगवान ने दृष्टि डाली सृष्टि के ऊपर, द लॉर्ड ग्लैंस ऑफ द मेटीरियल नेचर। तो ग्लैंस करने का मतलब यह है कि भगवान की आंखें हैं और इसका मतलब यह है कि भगवान प्रकृति से परे हैं। He's transcendental to the modes of material nature, therefore he glanced over the material nature. His eyes are transcendental. उनका मन दिव्य है, उनकी आंखें दिव्य है क्योंकि उन्हें दृष्टिपात की है। सहस्र जाता, भगवान ने इच्छा प्रकट की, लेट देयर बी क्रिएशन। इच्छा कौन कर सकता है, एक जड़ व्यक्ति इच्छा थोड़ा कर सकता है। निर्विशेष ब्रह्म क्या इच्छा करेगा कि सृष्टि हो जाए, एक व्यक्ति इच्छा करता है। तो चेतने महाप्रभु बताने लग गए और सार्वभौमाचार्य बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। उन्हें कहा कि जो भी शंकराचार्य की इस टीका को सुनेगा, शारीरिक भाष्य को सुनेगा, उसका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। जैसे कि पारस पत्थर होता है, एक टच स्टोन होता है, वो सोना उत्पन्न करता है। जो टच स्टोन सोना उत्पन्न करता है तो टच स्टोन जो है टच स्टोन ही रहता है, उसमें कोई विकार नहीं आता है। लेकिन शंकराचार्य का कहना है, वो परिणामवाद की चर्चा करते हैं, वो ये कहते हैं कि परम सत्य में ही विकार आ गया है। परम सत्य में विकार कैसे आ सकता है, जीव जो है वो मोहित होता है, जीव अपने शरीर को अपना मानता है, शरीर भौतिक शरीर को अपना मानता है, लेकिन भगवान सृष्टि करने के बाद फिर भी भगवान सृष्टि से अलग रहते हैं। तो ये जो विवर्तवाद की जो चर्चा की है शंकराचार्य ने, वो इस केवल ये है कि जीव इस शरीर को क्या मान रहा है, शाश्वत मान रहा है और इस देह से आसक्त हो रहा है, इस देह को सच मान रहा है। तो इस प्रकार से चेतने महाप्रभु एक एक करके सारा समझाते जा रहे हैं। और साथ में चेतने महाप्रभु ने कहा कि वास्तव में महावाक्य क्या है वेद का? वेद का महावाक्य है ओंकार। सारे वैदिक मंत्र जो है ओंकार से शुरू होते हैं, यानी कि ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि का सोर्थ भी क्या है? ओंकार है। और ये ओंकार क्या है? इट्स अ साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ये शब्द ध्वनि के रूप में भगवान जब प्रकट होते हैं तो वो ओंकार है। ये वेद वाक्य है, ये महावाक्य है। तत्वमसि महावाक्य नहीं है। तत्वमसि जो है केवल एक जीव के बारे में समझाने के लिए, एक जीवात्मा के लक्षणों को समझाने के लिए तत्वमसि शब्द का उपयोग किया गया है। और शंकराचार्य ने क्या अर्थ बताया तत्वमसि का? आप वो हो, यू आर दैट, कि जीव को देखकर, जीव क्या है? जीव ही वास्तव में वो परब्रह्म है, यानी जीव और परब्रह्म में कोई भेद नहीं है, आप ही वही हो। लेकिन इसका अर्थ क्या है? तत्त्वमसि का मतलब है तस्यत्वमसि, आप उनके हो, आप वो नहीं हो। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बताया कि तत्त्वमसि जो है ये महावाक्य नहीं है, केवल ये वेदों का एक साइड रिमार्क है। महावाक्य क्या है? ओंकार है। तो सर्वपटाचार्य जो है सब जब वर्णन उन्होंने सुना तो वो स्तब्ध हो गए। और साथ में फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पद्म पुराण में भी तो दिया है कि शिव जी जो है वो किसको आज्ञा दे रहे हैं? दुर्गा जी को आज्ञा दे रहे हैं कि हाँ आप जो है कलयुग में प्रकट होइए और आप मुझे छुपा दीजिए, ढक दीजिए। किस लिए? मेटेरियल सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रजा को आगे बढ़ाने के लिए, पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए जो आध्यात्मिक ज्ञान से विरत हो। तो ये स्वयं भगवान की आज्ञा थी, इसलिए शंकराचार्य ने ऐसा किया। शंकराचार्य का अपना कोई दोष नहीं है, वो तो शिव जी है। लेकिन भगवान विष्णु के कहने पर शिव जी ने ऐसा किया है। तो सर्वमठाचार्य ये जब सुना सब कुछ तो स्तब्ध से हो गए। और चैतन्य महाप्रभु ने फिर और ज्यादा एफर्म किया और उन्हें स्ट्रेस किया कि वास्तव में सर्वोच्च जो कर्तव्य है, सर्वोच्च जो जो ऑक्यूपेशन है, सबसे टॉप मोस्ट ऑक्यूपेशन क्या है एक जीव के लिए? वो है भगवान की सेवा करना। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु उनको कन्विंस कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा बद्ध जीव को तो छोड़ो, एक सिद्ध व्यक्ति के लिए भी जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, सेल्फ रिलाइज भी है, उसके लिए भी शुद्ध भक्ति को स्वीकार करना आवश्यक है। आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अयुक्तिम भक्तिम इत्थं भूतो गुणहरि, कि आत्मराम भी जो है वो भी भगवान श्री कृष्ण के गुण, उनकी लीलाओं का रसास्वादन करते हैं। फिर जब ये सर्वपटाचार्य ने श्लोक सुना श्रीमद् भागवत का, जो भागवत के प्रथम स्कंध में सातवें अध्याय के दसवें श्लोक में है, तो सर्वपटाचार्य ने कहा कि आप इसकी व्याख्या करेंगे, मैं सुनना चाहता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु का कि पहले आप व्याख्या करिएगा, उसके बाद फिर जो भी कुछ मैं जानता हूं मैं करूंगा। मैं तो बहुत ज्यादा कुछ जानता नहीं हूं, थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, मैं उसकी व्याख्या करूंगा। तो सर्वपटाचार्य ने आत्मराम श्लोक की व्याख्या 9 अलग अलग तरीके से की। चैतन्य महाप्रभु ने सुनकर बहुत उनकी प्रशंसा की। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप तो बृहस्पति तुल्य हो, आप बृहस्पति के समान हो, सभी शास्त्रों के ज्ञाता है। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर उसके बाद जो वर्णन शुरू किया, वो 9 पॉइंट्स एंड जो 9 एक्सप्लेनेशन जो दिए थे सर्वपटाचार्य, उसको बिना छुए चैतन्य महाप्रभु ने 18 अलग अलग तरीकों से चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया। अब यहां वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि एक तो समय नहीं है, एक इतना अंडरस्टैंडिंग में नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने 18 अलग अलग तरीके से उसका वर्णन किया। और बाद में जब जाते हैं बनारस में, जब सनातन गोस्वामी से श्री चैतन्य महाप्रभु मिले, तो सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने 61 तरीकों से इस श्लोक को समझाया। सर्वपटाचार्य ने जब सुना ये वर्णन सुना तो वो समझ गए कि ये साधारण जीव नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी सृष्टि में कोई भी जीव जो है इस प्रकार की व्याख्या नहीं कर सकता इस श्लोक की, जिस तरह से आपने किया है। जो चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार किया उन्होंने कि ये साक्षात नारायण है। तो चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत के अनुसार ऐसा दिया है कि चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले उनको चतुर्भुज रूप दिखाया और बाद में द्विभुज रूप दिखाया। तो सर्वपटाचार्य ने अपनी गलती को स्वीकार किया और ने कहा कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, आपके शरण में बहुत बड़ा अपराध हुआ है। और इस तरह से सर्वपटाचार्य चैतन्य महाप्रभु की शरण में गए और उनसे क्षमा याचना की और पूरी तरह से शरणागत हो गए। सर्वपटाचार्य भी चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त बन गए। तो चैतन्य महाप्रभु सर्वपटाचार्य बोलते हैं कि भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, सर्वपटाचार्य ने पूछा। तो चैतन्य महाप्रभु ने बृहन्नारदीय पुराण से उदाहरण दिया और सबसे पहले क्या बोला, चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम इन डिवोशनल सर्विस। ये जो हरिनाम है, संकीर्तन है, ये सर्वश्रेष्ठ अंग है भक्ति का। और फिर बृहदारण्यक पुराण से उन्होंने श्लोक उदित किया, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। सार्वभौमाचार्य ने गोपीनाथाचार्य को बोला, क्योंकि आप चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त हैं और मेरा आपसे संबंध है, आपसे क्योंकि संबंध है मेरा, इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु ने मेरे ऊपर कृपा की है, क्योंकि आपसे मेरा रिश्ता है। और इसके बाद सार्वभौमाचार्य ने, वैसे तो चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में 100 श्लोक उदित किए थे, 100 श्लोक लिखे थे सार्वभौम शतक करके, लेकिन उससे पहले उन्होंने 2 श्लोक लिखे एक ताल के पत्ते पर, ताल के पत्ते पर लिखकर, और उन्होंने फिर क्या किया, जगदानंद पंडित को दे दिया। और जगदानंद पंडित जब आए वहां पर मुकुंद दत्त को दिए, तो मुकुंद दत्त ने जब देखा वो श्लोक देखे, एक था वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा और दूसरा कालम नष्टम, इस तरह से 2 श्लोक थे। इन 2 श्लोकों को पढ़कर मुकुंद इतने गदगद हो गए, उनको लगा शायद चैतन्य महाप्रभु इसको कहीं फाड़ ना दे। मुकुंद दत्त ने पहले ही बाहर दीवार में उन 2 श्लोकों को हाथ से लिख दिया, और उसके बाद फिर अंदर जब लेके गए चैतन्य महाप्रभु के पास, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, तुरंत उस पत्ते को फाड़ के फेंक दिया। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए वास्तव में सार्वभौमाचार्य को देखकर कि वो किस तरह से बदल चुके हैं, अब वो कृष्ण के अनन्य भक्त बन चुके हैं। एक दिन सार्वभौमाचार्य ने श्रीमद् भागवत एक श्लोक उदित किया, तत्तेनुकंपा सुषमक्षमानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद्वा वपुर भीर विदधम नमस्ते जीवेतयो भक्ति पदे सदाय भा। तो मुक्ति पदे शब्द को हटाकर सार्वभौमाचार्य ने भक्ति पदे लगा दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये श्रीमद् भागवत श्रुति है, श्रीमद् भागवत श्रुति तो नहीं बोला, उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत कि जितने भी श्लोक हैं वो शाश्वत है, इनको इनको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुक्ति पदे का मतलब ये है भगवान मुकुंद जिनके चरणों में मुक्ति वास करती है, तो भागवत के श्लोकों को बदलने की आवश्यकता नहीं। और यहां तक श्रील जी गोस्वामी ने षट संदर्भ में बताया है कि क्या बताया उन्होंने, उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत जो है श्रुति है और श्रुति में कोई परिवर्तन नहीं आता, जिस तरह से भगवत गीता श्रुति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पुराणों में जो स्मृति है हो सकता है कि परिवर्तन आ सकता है, लेकिन जहां तक श्रुति की बात है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहां पर जो मुक्ति पदे लिखा है ये बिल्कुल ठीक लिखा है, इसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु लेकिन बड़े प्रसन्न हुए कि सार्वभौमाचार्य देखिए उनका पूरा विचार बदल चुका है, वो अब भक्त बन चुके हैं। एक दिन चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह, क्योंकि इतना कुछ हो गया था कन्वर्सेशन, बड़ा हैवी कन्वर्सेशन हो गया था, सार्वभौमाचार्य का पूरा जीवन ही बदल गया था, तो इस कारण से सार्वभौमाचार्य एक दिन सुबह विश्राम कर रहे थे। प्रातःकाल के समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके सीधे सीधे कहां पर पहुंचे, सार्वभौमाचार्य के घर में पहुंचे, दरवाजा नॉक किया, सार्वभौमाचार्य विश्राम कर रहे थे, अभी उठे भी नहीं थे, मुंह भी नहीं धोया था। चैतन्य महाप्रभु ने आकर सार्वभौमाचार्य को उठाया और कहा जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके आया हूं आपके लिए। चैतन्य महाप्रभु परीक्षा ले रहे हैं, सार्वभौमाचार्य जैसे ही जगन्नाथ जी का महाप्रसाद देखा तुरंत मुंह में डाल लिया। तो सार्वभौमाचार्य को बोले महाप्रभु, अरे आपने तो अभी तक मुंह नहीं धोया है, आपने महाप्रसाद कैसे स्वीकार कर लिया। सार्वभौमाचार्य जो हरिभक्ति विलास में ये श्लोक दिया गया है, सार्वभौमाचार्य ने कहा कि महाप्रसाद भले ही दूर से आ रहा हो, बहुत दूर से आ रहा हो और बासी भी हो गया हो, पुराना भी हो गया हो, कैसा भी हो, अगर महाप्रसाद आपको मिलता है उसको तुरंत स्वीकार करना चाहिए। हरिभक्ति विलास में तो श्रील सनातन गोस्वामी ने यहां तक लिखा है, अगर आप महाप्रसाद का अनादर करते हैं, अवहेलना करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगले जन्म में कोढ़ का रोग हो जाए। तो महाप्रसाद को तुरंत स्वीकार करना चाहिए, भले आप एक दाना लें। तो सार्वभौमाचार्य ने क्या किया, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लिया और तुरंत मुंह में डाल दिया। चैतन्य महाप्रभु इतने खुश हो गए, अब तो सार्वभौमाचार्य पूरे के पूरे घोड़िया वैष्णव बन गए थे, चैतन्य महाप्रभु के निकटतम पार्षदों में से एक हो गए थे सार्वभौमाचार्य। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार का आनंद मिलता है। भक्ति रसाप सुंदर में श्रील प्रभुपाद जी भी समझाते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी ने जैसा बताया है, जब शुद्धा, जो शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है शुद्धा, जब क्लेशाग्नि होती है तो शुद्धा प्रकट होता है, सब कुछ ऑस्पिशियस हो जाता है। और वहां पे एक्सप्लेन करते हुए श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के सुख होते हैं। एक सुख प्राप्त होता है किससे, मेटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन से एक हैप्पीनेस मिलता है, जैसे स्वर्ग लोक का सुख है। एक सुख मिलता है लिबरेशन से, ब्रह्म से एकत्व की जब प्राप्ति होती है तो ब्रह्मानंद का सुख मिलता है। एक सुख क्या मिलता है, भक्ति का सुख, कृष्ण भावना का आनंद, श्रील प्रभुपाद जी वहां पे खोलावेचा श्रीधर का उदाहरण दे रहे हैं कि खोलावेचा श्रीधर, उनके पास पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं थे, उनकी झोपड़ी जो थी छत भी नहीं थी ठीक से, उनके धोतियों में कई छेद थे, लेकिन खोलावेचा श्रीधर क्या करते थे, गंगा जी की पूजा करते थे और प्रत्येक दिन जो उनकी कमाई होती थी डोने वगैरह बेच के केले बेच के उसमें से 50% जो है वो भगवान की सेवा में लगाते थे और इतने आनंद में रहते थे कि दिन रात वो संकीर्तन करते थे, कीर्तन में रहते थे। तो प्रभुपाद जी खोला विचार श्रीधर का उदाहरण दे रहे हैं कि भक्ति से कितना आनंद प्राप्त होता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मसना परम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इस प्रकार यहां पे ये बात बताई जा रही है कि यदि ब्रह्मानंद को अर्थात ब्रह्म ज्योति में लीन होने से आनंद को 100 करोड़ गुणा कर दिया जाए तो भी वह भक्ति में अनुभव किए गए दिव्य आनंद के सागर में के एक परमाणु के बराबर भी नहीं होगा। इसलिए तो भीलमंगल ठाकुर भी कहते हैं कि क्या कि मुक्ति और भक्ति ये सब जो है द्वार पे खड़ी है, हाथ जोड़ के खड़ी है, उनको भीतर आने से मना करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं भी कृष्ण गोविंद की सेवा में लगा हूं, वहीं पर रुक जाऊं। इसलिए श्रीपाद वल्लभाचार्य वास्तव में देखकर उन्होंने दोष तो देखा लेकिन वास्तव में उसमें कोई दोष था नहीं। जब श्री रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित श्लोक है श्रीपाद वल्लभाचार्य ने देखा भुक्ति मुक्ति स्प्रिहा यावत पिशाची हृदि वर्तते। श्री रूप गोस्वामी ने जो श्लोक लिखा है इसका अर्थ क्या, भुक्ति मुक्ति की जो इच्छा है वो पिशाची के समान है, क्योंकि कोई अगर भक्त जो है भुक्ति और मुक्ति के द्वारा प्रभावित हो जाता है तो पिशाची के समान पीछे भागती है वो। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य को लगा कि भुक्ति मुक्ति को ही पिशाची बोल दिया है, लेकिन श्रील जी गोस्वामी ने फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने स्प्रिया को पिशाची बताया है, भुक्ति मुक्ति को पिशाची नहीं बताया है। और भुक्ति और मुक्ति तो वैसे ही प्राप्त हो जाती है भक्ति से, उसके लिए अलग से प्रयास करना ही नहीं होता, ना भक्त इसकी आकांक्षा करता ना इसकी इच्छा करता है। तो भक्त क्या इच्छा करता है, भक्त तो केवल सेवा करना चाहता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शौकले आशान कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शान। आशांत क्यों है, क्योंकि उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, केवल एक ही इच्छा है कि मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं, कृष्ण की सेवा में वो तत्पर रहना चाहता है। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताल भक्ति रहित गीतोई। तो इसलिए सब भक्त जो है जन्म जन्मांतर केवल अयुक्त की भक्ति चाहता है, कृष्ण की सेवा करना चाहता है। और यही प्रहलाद महाराज यहाँ पर अपने सहपाठियों को क्लासमेट्स को ये बता रहे हैं कि आपको शुद्ध भक्ति के धरातल पर आप सबको पहुंचना है तो भवसागर से अपने आप ही मुक्त हो जाएंगे। भवसागर से मुक्त होने की चिंता मत करो, आप केवल कृष्ण की सेवा करो, भगवान की सेवा स्वीकार करो, भगवत भक्ति में लग जाओ मेरी तरह, आप हर प्रकार की समस्या से छुटकारा पाओ। ये है असली निर्वाण, ये है असली ब्रह्म निर्वाण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, समय तो हो गया। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। हाय गॉड प्रेमानंद।